ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। व्यापार और निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक जयंतो रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की आज से नई दिल्ली में पहले बिजनेस शिखर सम्मेलन का आरंभ हुआ। 3 दिन तक ये चलेगा। हमारे साथ बिम्स्टेक पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयंत रॉय चौधरी हैं। जयंतो, बहुत बहुत स्वागत आपका।
धन्यवाद।
शुरुआत करते हैं कि ये बिम्स्टेक क्या है, आज की तारीख में इसका कितना महत्व है और आने वाले समय में इससे जुड़े जो देश हैं कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं आर्थिक मोर्चे पर और सामाजिक मोर्चे पर।
ये जो 7 देश हैं, ये भारतवर्ष के कह सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन में ये सारे के सारे स्थित हैं। बांग्लादेश है सबसे बड़ा इनमें से, बर्मा है, उधर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे देशों के साथ ये बिम्स्टेक है। ये बे ऑफ बंगाल का एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगायोग हो। काफी हद तक ये बिम्स्टेक का जो स्थापना की गई है उससे काफी लाभ हुआ है इन सारे देशों को। इनके बीच में सिर्फ न कि ट्रेड ही बढ़ा है बल्कि यातायात की काफी इनमें उन्नति हुई है। अब देखें, अगर मोटर व्हीकल्स का एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं हम लोग नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ताकि हमारे एक दूसरे की गाड़ी दूसरे देश में जा सके, मतलब कि सीमलेसली हम अपने सामान जो है एक देश से दूसरे देश तक ले जा सकते हैं। क्यों हम इसमें साउथ ईस्ट एशिया को इंक्लूड किए हैं? क्योंकि हमारा इच्छा है कि अल्टीमेटली ये जो रीजन है, दोनों रीजन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये इंटीग्रेटेड हो जाए व्यापार के जरिए और लोगों के आने जाने के जरिए, और इसीलिए इस बिम्स्टेक का स्थापना की गई थी। काफी हद तक कह सकते हैं कि हमने उन्नति की है। अब बांग्लादेश जो कि सबसे हमारा एक वायबल पार्टनर था इन पूरा रीजन में
जी।
उसमें आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अशांति चल रही है और कल वहां पे सरकार की भी बदलाव हुई है
जी। जयंतो, उस टॉपिक पर हम आ रहे हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और CII के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसे आयोजित कर रहा है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। अब आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे जयंत, हम उस पे आते हैं कि आपसी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और अपने अपने देशों में जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस दिशा में काफी हद तक सफलता होती दिख भी रही थी क्योंकि सीमलेस ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे अग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, इस तरीके के हालात के पैदा होने से क्या आपको लगता है कि कोई एक जो सहयोग है आपसी आर्थिक, इसमें झटका लगेगा, थोड़ा सा वो बैकट्रैक पे आएगा?
देखिए, ये एक सामूहिक दिक्कत है, एक तकलीफ है कह सकते हैं। कुछ एक महीने से उनके वहां पे एक अशांति चल रही है जिसके लिए आप देख पा रहे हैं कि पेट्रापोल बेनापोल का जो बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, उस बॉर्डर में बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं। बट ट्रक्स खड़े होने के 2 मतलब है। एक तो हाँ, वहां पे अशांति हो रही है, उसलिए हमारा व्यापार जा नहीं पा रहा है, और दूसरी बात है कि वहां पे व्यापार का आग्रह है, इसीलिए इतना लंबी कतार से ट्रकें खड़ी हुई है। क्या ये अशांति जिंदगी भर चलेगा? नहीं, ये समूह है। मेरे ख्याल से कुछ 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर इसको संभाल पाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो भी सरकार आए, भारतवर्ष और बांग्लादेश में जिस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिस तरह से हमारा व्यापार अग्रसर किया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि व्यापार बल्कि बढ़ेगा, अब घटने की सवाल कुछ नहीं है। और भारतवर्ष के साथ उसका नेचुरल एक ट्रेड का एफिनिटी है और वो एफिनिटी रहेगा। बांग्लादेश पृथ्वी में एक बड़ा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर के रूप से उभर आई है, आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से उभर के आई है, और वो स्टेटस भी बांग्लादेश को मेंटेन करने पड़ेगा अगर उसको अपनी अर्थनैतिक जो उन्होंने जो बढ़ोतरी की है, उनकी जिस तरह से GDP बढ़ा है, उसका अगर उनको संभालना है तो उनको गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और बढ़ोतरी देने पड़ेगा। और ये उनके लिए नेचुरल एक ट्रेड का जरिया है कि भारतवर्ष के साथ ट्रेड करे, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड करे, इसलिए बिम्स्टेक उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारतवर्ष के लिए है, और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश उससे पीछे हटेगा।
बिल्कुल, आपने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बात की, वहां की जीडीपी की बात की। अगर हम देखें तो पिछले 15-20 वर्षों में बांग्लादेश ने आर्थिक तौर पर काफी तरक्की की है और इसके पीछे जो गारमेंट उद्योग है वो पूरी दुनिया को वहां एक्सपोर्ट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से सटा हुआ है और म्यांमार तक को वो जोड़ने का एक कॉमन पॉइंट है, नहीं तो म्यांमार पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो मेरा सवाल ये था जयंतो कि चूंकि ट्रक्स खड़े हो गए हैं तो ये 15-20 दिन, जैसा कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि तब तक सब ठीक होगा, इस 15-20 दिन के दौरान भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत एक पॉज की स्थिति तो आ सकती है व्यापार में।
हाँ, पॉज की स्थिति तो आ चुकी है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 दिन, ज्यादा से ज्यादा एक महीना, उसके बाद आपको व्यापार फिर से करने पड़ेगा, उनको भी और हमको भी। और जो आपने बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार से भी सटा हुआ है, तो हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरिए घूम के ना जाके हम सीधा, अगर हमारे लिए बांग्लादेश का रोड जो अभी खुला हुआ है उससे हम जाए तो कलकत्ता से आप सीधा ढाका होते हुए चिटागोंग जा सकते हैं, बल्कि ढाका को भी आप बाईपास करके आप चिटागोंग जा सकते हैं और वहां से आप म्यांमार की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अगर हम एशियन हाईवे नंबर 1 की जो बात करें, जो कि एक परिकल्पना थी एडीबी और वर्ल्ड बैंक की, उसके जरिए आप बात करें तो भारतवर्ष के साथ म्यांमार ही नहीं बल्कि सीधा वियतनाम की होचीमिन शहर तक की एक रास्ता बनाने की बात है, जो रास्ता ज्यादातर जगहों में है और उसको आपको इम्प्रूव करके एक एक्सप्रेस वे बनाने है, ताकि आप दिल्ली से अगर आप गाड़ी चला के जाए तो सीधा आप बांग्लादेश होते हुए, म्यांमार, थाईलैंड होते हुए आप वियतनाम के होचीमिन शहर तक जा सकते हैं। तो ये ट्रेड के लिए और पर्यटन के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा ट्रेड के लिए, क्योंकि आपको दिल्ली से या अमृतसर से या जहां से भी, यहां पे भी आपका कारखाना है, वहां से आपको किसी समुद्र तट तक नहीं जाने की जरूरत है, जहाज में आपका कार्गो को लोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रक के जरिए आप पूरा रास्ता पार करके आप वहां तक अपना सामान ले जा सकते हैं। इससे समय की भी बचत है, इससे बहुत सारे आपके जो पोर्ट पे टाइम की बचत है वो बच जाएंगी, खर्चा भी बहुत ज्यादा घटेगा। ये कार्यरत हो सकता है, सिर्फ बांग्लादेश की दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा दिक्कत म्यांमार में है, क्योंकि म्यांमार में भी शांति की एक व्यवस्था है। आप नॉर्दर्न जो प्रोविंसेस है म्यांमार के, वहां पे रेबेलियंस चल रही है, अराकान में रेबेलियन हो रही है, चीन प्रदेश में हो रही है, कचिन प्रदेश में हो रही है। ये सब रेबेलियंस जब खत्म हो जाएंगे, जब म्यांमार में शांति कायम हो जाएगा, तब ये रास्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रास्ता के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ रास्ता ही नहीं, इसी एक वक्त में हम लोग जरूर इसी रूट से आप ट्रेन का भी चलाचल कर सकते हैं, जिससे और आपका खर्चा घट सकता है।
बिम्स्टेक के थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के तहत इसे स्थापित किया गया था। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाह रहा था लेकिन उसे अलग रखा गया। शुरुआत में इसमें 4 देश थे और इसका नाम बिस्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। 2004 में भूटान और नेपाल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। और जयंतो, अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम तक रास्ता में पहुंच सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इसमें देशों की संख्या बढ़ी, 4 से 7 हुए, आने वाले समय में थोड़ा और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, वियतनाम की तरफ भी इसका बढ़ाव हो सकता है, कुछ और देश आ सकते हैं, इसमें फायदा होगा उसका?
बिल्कुल हो सकता है, और जोड़ देशों के साथ इसमें जोड़ सकते हैं, सिर्फ थाईलैंड और म्यांमार तक ही सीमित ना रख के इसको आगे ले जा सकते हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक जा सकते हैं और नीचे की तरफ अगर आप जाए तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया तक जा सकते हैं। ये बात अलग है कि आसियान के साथ हमारा अलग से डायलॉग वैसे ही चल रहा है भारतवर्ष का, परंतु फिर भी हम बिम्स्टेक में भी और देशों को जोड़ सकते हैं, खासतौर से जो आसियान में उतने उन्नत देश ना है वो शायद जुड़ने में ज्यादा रुचि रखेंगे, खास तौर से क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटीज ट्रेड में बहुत सारे हैं, इन देशों के साथ हमारा ट्रेड का बढ़त का सुविधा और संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम करने की कोशिश जरूर हमको जारी रखनी पड़ेगा। और जैसे कह रहे हैं कि हम अगर रास्ता बनाए, वाकई में एशियन हाईवे नंबर 1 हमारे बने और उसके साथ साथ रेलवे का भी रूट बने, तो इन सब देशों को आपको पार करने पड़ेगा, आपको सिर्फ थाईलैंड ही नहीं, आपको कंबोडिया के जरिए आपको वियतनाम तक जाने पड़ेगा, और ये जरूरी है क्योंकि इससे हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर आप बात करें, अभी दुनिया कोशिश कर रही है कि चाइना से हटके ग्लोबल सप्लाई चेन करे। कोविड के जरिए हमने देखा है कि एक देश के अगर हम पूरा डिपेंडेंट हो किसी प्रोडक्ट के लिए तो किस तरह से पूरा व्यापार व्यवस्था ठप बैठ सकता है, उसी लिए सारी दुनिया चाहती है चाइना प्लस वन एक क्रिएट करे ग्लोबल सप्लाई चेन, और ये ग्लोबल सप्लाई चेन किस रूट से बनना बड़ा आसान है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, वो काफी एक्सपैंड कर रही है, उनके साथ अगर आप भाईचारे में काम करें तो यहाँ से भारतवर्ष से टेक्सटाइल गया, बांग्लादेश में प्रोसेस हुआ, आगे जाके उसके साथ कुछ और लगा और वियतनाम में फिनिश हुआ, ये होना बहुत मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप ग्लोबल चेन बना सकते हैं बाकी चीजों के भी बनाने के लिए, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो जहाज बनाना। तो ये सारे कारणों के लिए हमारा ये चेन को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है।
बेमिस्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को एक साथ लाता है। और जयंत, अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए बिमस्टेक का आने वाले वर्षों में कितना महत्व है, क्योंकि भारत सभी देशों को एक तरीके से कहें तो जोड़ता है।
एक्चुअली हम एक एंड ऑफ द चेन में है, भारतवर्ष से शुरुआत होकर आप थाईलैंड तक जा रहे हैं, जोड़ने का काम एक्चुअली म्यांमार और बांग्लादेश ज्यादा कर रहा है, परंतु अर्थनैतिक अगर व्यवस्था देखें उससे हमारा इन सारे देशों के साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक हिस्सेदारी है। आप बांग्लादेश के साथ अगर देखें करीबन 16 बिलियन डॉलर का हमारा उनके साथ व्यापार है, और हमारी जो कंपनीज हैं भारतीय कंपनी है उनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन्वेस्टमेंट्स को हम चाहते हैं कि और बढ़े और वो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन बन रहा है उसका एक हिस्सेदारी कर पाए। भारतीय इन्वेस्टमेंट थाईलैंड में भी काफी है, म्यांमार में भी हमने कोशिश की है, शायद और बढ़ता अगर म्यांमार में इतना अनिश्चितता नहीं रहता तो शायद हमारे व्यापारी और ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट करते, पर ये सारे रीजन्स काफी सुदृढ़ हैं। जो हमारे टेक्सटाइल्स के बिजनेसमैन हैं वो काफी हद तक वियतनाम और कंबोडिया में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ये सारा जो है कह सकते हैं कि एक जोन ऑफ इकोनॉमिक को प्रॉस्पेरिटी है जिसको हमें लेके चलने पड़ेगा और जिसको हमें बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है।
जैसा कि आपने जयंत बताया, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो व्यापार है लगभग 16 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर के बीच रहा है हाल के वर्षों में। कोविड के समय में थोड़ी सी जरूर इसमें कमी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से बांग्लादेश और भारत का व्यापार लगभग 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। जो बाकी के छोटे देश हैं, जैसे अगर हम भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, जो बाद में इसमें शामिल हुए 2004 में, इन देशों के साथ अगर भारत के आर्थिक सहयोग, कोऑपरेशन और आपसी व्यापार की बात करें तो उसमें आप कौन सी ऐसी चीजें देखते हैं जो सबके लिए फायदेमंद है?
देखिए, भूटान और नेपाल खासतौर से इनका जो ट्रेड सरप्लस बहुत कम है, इनके लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल है, परंतु इनको भी बेनिफिट्स मिल सकता है ये पूरा सिस्टम से, क्योंकि एनर्जी ट्रेड अब बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक व्यापार बन चुका है, और भारतीय जो पावर ग्रिड है उसके जरिए नेपाल भूटान अपना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास बहुत सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है हाइडल पावर प्रोजेक्ट से हुए, वो बांग्लादेश को बेच सकते हैं। बांग्लादेश भारतवर्ष के तरह एक एनर्जी डिफिसिट कंट्री है, भारतवर्ष क्योंकि हमारे पास जमीन ज्यादा है, हमारे पास नदियां ज्यादा है, हम फिर भी कोशिश कर पा रहे हैं और हमने मोटा मोटी हमारा जो एनर्जी नीड्स है वो हम संपूर्ण तरीके से पूर्ण कर पाए हैं, परंतु बांग्लादेश के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, उसको बांग्लादेश को एनर्जी इंपोर्ट करते रहने पड़ेगा। वहीं पे नेपाल और भूटान से उनका व्यापार ऑलरेडी बढ़ चुका है और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, तो ये कह सकते हैं कि रीजनल जो ट्रेड है, नॉट ओनली इनटैंजिबल गुड्स बट इन इनटैंजिबल गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इसकी काफी बढ़ावा मिल चुकी है बिम्स्टेक के चलते हुए, और यही आशा है कि इस तरह से सिमिलर एनर्जी ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया में भी होगा। कंबोडिया में बहुत सारे डैम और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सिमिलर नेचर के, और वो कोशिश करेंगे कि वो बेचे अपना इलेक्ट्रिसिटी वियतनाम में, थाईलैंड में वगैरह बाकी देशों में, और इसीलिए देखेंगे कि वहां पे भी सिमिलर एक उद्योग की बात चल रही है।
बिल्कुल, जयंत राय चौधरी, बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन जो 6 से 8 अगस्त तक चल रहा है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपको।
अभी आप सुन रहे थे व्यापार और निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रथम बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक जयंत रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।